के भर भाल पर, तन के भर भाल पर विराज रहा मैं, तन के भर भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं।
ओम शांति। आज सम्मान की श्रृंखला का 107वां दिन है। अंतिम शोर पर हम पहुंचने वाले हैं और आज का जो सम्मान है, मैं इस संसार का अंतिम महायज्ञ हूं। बाबा कहते हैं आज तक अनेक प्रकार के यज्ञ संसार में रचे जाते हैं। जब किसी पर कोई विपदा आती है, कोई मुसीबत आती है, तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए, कष्ट निवारण करने के लिए यज्ञ रचा जाता है। किसी पर कोई परछाया होता है तो यज्ञ रचते हैं। तो ये संसार भी बहुत बड़ी विपदा में फंसा हुआ है। इस संसार पर भी बहुत सारी विपदाएं आन पड़ी हैं। रावण के चुंगल में ये संसार विकारों से ग्रसित हो गया है। जब हर इंसान पतित बन जाता है, तमो प्रधान बन जाता है, तो जो इस संसार का बड़ा सेठ है, बेहद का सेठ, वो आता है यज्ञ रचने के लिए। वैसे भी यज्ञ कौन रचते हैं, बड़े बड़े यज्ञ जो सेठ होते हैं। तो बाबा सेठों का सेठ है महासेठ, जिसने ये बेहद का यज्ञ रचा है। और इस बेहद के यज्ञ में पूरा संसार स्वाहा होना है। और इस बेहद के यज्ञ को संचालित करने के लिए बाबा ने गिनी चुनी आत्माओं का चयन किया है, जो यज्ञ को संभाल सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं। तो ये यज्ञ जो बेहद का महायज्ञ है, इस यज्ञ में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए? ये यज्ञ बेहद का त्याग मांगता है। अगर हम इस यज्ञ इतिहास को पीछे मुड़कर देखें, इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद जिस मोड़ पर हम पहुँचे हैं, तो इसके पीछे अगर बड़ी सबसे भूमिका है, वो त्याग की भूमिका है। जो संसार में इतनी शान और शौकत से जीने वाली आत्माएं थी, अनेक प्रकार के आकर्षण थे, कई तरह के फैशन थे, जिनके आगे पीछे नौकर घूमते रहते थे, पांव जमीन पर नहीं गलीचे पर थे, धन की कोई कमी नहीं थी, ऐसा जीवन जीने वाली आत्माओं ने एक धक से वो सब चीज़ें त्याग कर दी, क्योंकि बिना त्याग के जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। तो उस त्याग के बल पर ये इतना बड़ा वट वृक्ष, जिसकी छाया से अभी अनेका अनेक आत्माओं का जीवन परिवर्तन हुआ है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े बलिदान किए हैं, कुर्बानी दी है, ने तो शान शौकत के जीवन में, चकाचौंध के जीवन में, खाने पीने के शौकीन, वो सब चीज़ें एक धक से त्याग दी। वो भी तो जी सकते थे ना, लेकिन इस संसार के प्रति उन्होंने अपने कर्तव्यों को समझा, जिम्मेवारी को समझा, वो सारे हद के अधिकार सब छोड़ दिए। नहीं तो आज के संसार में देखा जाए तो मनुष्य अधिकतर अपने अधिकारों पर अपना पूरा अधिकार रखता है, अधिकारों की डिमांड करता है, अधिकारों के बारे में सोचता रहता है, अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन करता है, लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति विमुख हो जाता है। तो ऐसी आत्माएं जिन्होंने अपने अधिकारों को दरकिनार करते हुए, जो हद के अधिकार थे, अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी और इतना लंबा सफ़र तय करते करते अनेका अनेक आत्माओं के जीवन को त्याग तपस्या के बल से सींचा, तो ये अविनाशी अश्वमेघ रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जिसमें बाबा कहते हैं तुम्हें दधीची ऋषि मिसल हड्डियां देनी है, तो इस यज्ञ का कितना कदर होना चाहिए। बाबा कहते हैं पाई पाई से ये यज्ञ चल रहा है, तो ये यज्ञ त्याग मांगता है। जब तक हमारे जीवन में त्याग नहीं है तो यज्ञ के प्रति हम वफादार नहीं हैं, और इस त्याग में वास्तविक सच्चा सुख समाया हुआ है। बाबा कहते हैं तुम बेहद के यज्ञ के रक्षक हो, इस बेहद के महायज्ञ में हमें कौन कौन सी आहुतियाँ देनी हैं, कौन कौन सी ऐसे अग्नि प्रज्वलित करके रखनी है, ये हम सभी अपने अपने स्तर पर विचार करके अपने जीवन में पुरुषार्थ करके आगे बढ़ते रहेंगे। ये यज्ञ किस लिए रचा है? बाबा ने कहा कि स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए। जो स्वराज्य हमारा था, जो हमने खो दिया, फिर से उसको अर्जित करने के लिए, फिर से उसको प्राप्त करने के लिए, उस स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए उतना त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए, उतना ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति लव चाहिए, प्रेम चाहिए, उतना उसके यज्ञ से उतना स्नेह चाहिए। उस यज्ञ के प्रति हमारी क्या भूमिका है, क्या कर्तव्य हैं, उसके प्रति जागरूकता चाहिए। तो इस बेहद के यज्ञ में, महायज्ञ में हमें कौन कौन सी आहुतियाँ देनी है? तो सबसे पहले तो है, कौन सी आहुति देनी होगी? स्वयं की समर्पणता, समर्पण भाव। बाबा कहते हैं कोई कोई समर्पित बच्चे भी हैं जिनको यज्ञ की कदर नहीं है। तो यहाँ तन से समर्पणता की बात नहीं है, यहाँ मन से समर्पणता की बात है। बाबा मुरली में कई बार जिक्र करते हैं माताओं का, कि कैसे एक एक रुपया एकत्रित करके इस यज्ञ को चला रहे हैं, कैसे वो यज्ञ में अपने पोटली बनाकर बेचती हैं। तो हमें इस यज्ञ का स्थूल और सूक्ष्म रूप से कितना कदर होना चाहिए। तो स्वयं की समर्पणता, और समर्पणता बहुत ऊंची अवस्था का नाम है, और सबसे बड़ी समर्पणता ब्रह्मा बाबा का जीवन हम सबके समक्ष है, कि कैसे अपना तन मन धन श्वासोश्वास पूरा समर्पित कर दिया। मम्मा का जीवन, दादियों का जीवन, अपने लिए कुछ नहीं रखा, सब यज्ञ में बलिदान कर दिया। तो ऐसे ही हम पूरे मनोयोग से संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, समय, श्वास, कहाँ तक पूरी समर्पणता के साथ इस यज्ञ में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, वो स्वयं को जांच करना है। तो इस यज्ञ में, बेहद के महायज्ञ में, हमें आहुतियाँ देने के लिए निरंतर जागरूक रहना पड़ेगा। तो पहली समर्पणता, पहला है आहुति है पूरी समर्पणता, हड्डी हड्डी स्वाहा कर देनी। ददीची ऋषि मिश्र बाबा कहते अपनी हड्डियां स्वाहा कर दो। जब भी हमको समय मिलता है, जैसे कल भी बताया था ना, माया कब आती है, फुर्सत में आती है, तो हम स्वयं को इतना बिजी रखने का स्वयं को ही एक प्लान तैयार करना है। भले आज तक हमने अनेक प्रकार के प्लान तैयार किए, उन पर चले, लेकिन फिर से नया प्लान तैयार करना है, क्योंकि जब तक हम स्वयं का प्लान तैयार नहीं करेंगे तो हमारी उन्नति नहीं होगी, हम पुरानी चाल से चलते रहेंगे। इसलिए जीवन में नवीनता चाहिए, प्लानिंग बुद्धि चाहिए। बाबा कहते हैं सर्विस की नई नई युक्तियाँ रचो, और सर्विस के अनेक रास्ते हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाषण करके या दूसरों को मुख से ज्ञान सुनाकर ही सर्विस है। सबसे बड़ी सर्विस है स्वयं को संपूर्ण बनाना, स्वयं को संपन्न बनाना, स्वयं को संपूर्ण पवित्र बनाना, स्वयं के मन को इतना शुद्ध कर देना है कि व्यर्थ उसमें ठहर ही ना सके, उसमें स्पर्श ही ना कर सके। तो स्वयं के प्रति इतनी कड़ी नज़र, पैनी नज़र रखनी पड़ेगी। तो समय की समर्पणता, हम समय को कितना सफल कर रहे हैं। नेक्स्ट, हमें जो इतना बड़ा ईश्वरीय ज्ञान का धन मिला है, ये जो ज्ञान है ये एक घी की तरह काम करता है। जितना ये ज्ञान हमारी मन बुद्धि में रहेगा, उतना इस महायज्ञ में अग्नि प्रज्वलित रहेगी, उस अग्नि में हमारे सारे विकर्म भस्म हो जाएंगे। तो ज्ञान की कितनी कद्र है, क्योंकि मन बुद्धि अनेका अनेक जन्मों से मलिन हो चुकी है, एकदम कमजोर हो चुकी है। जो आज भी बाबा ने मुरली में कहा, तुम्हारे अंग अंग में कीड़े पड़े हुए। मन बाबा हमें कितना वैराग्य दिलाते हैं, लेकिन फिर भी ये सब सुनने के बाद भी शरीर का आकर्षण वो छूटता कहाँ है, बुद्धि उसको स्वीकार ही नहीं करती। इतना कीड़े अच्छे लगते हैं, तो ये शरीर की तुलना, इस शरीर का वास्तविकता बाबा हमें कैसे कैसे समझाते रहते हैं कि बच्चों की बुद्धि में थोड़ा सा तो बैठे, बुद्धि में कीड़े पड़ गए हुए। और वैसे सचमुच अगर शरीर का अवलोकन करेंगे, सचमुच ये कीड़ों से भरा हुआ है। कैसे, ये दांतों में कितने कीड़े होते हैं, पेट में कीड़े होते हैं, भगवान भी सवेरे सवेरे आके कितना शुभ शुभ बोलते हैं कि तुम्हारे अंग अंग में कीड़े पड़े हुए हैं, दही में। हाँ, तो इस संसार की हर चीज में कीड़े पड़े हुए, कैल्शियम से भरे हुए कीड़े हैं। तो ये संसार की वास्तविकता को समझना है तो यज्ञ के प्रति हमारी वो रिस्पेक्ट बढ़ेगी, हमें यज्ञ का कदर रहेगा। तो ज्ञान का कदर करना है। तो ये जीवन ही वास्तविक में एक यज्ञशाला है, यज्ञ कुंड है। इसमें निरंतर पुराने संस्कारों की लकड़ियां डालते रहना है, उसको प्रज्वलित करने के लिए निरंतर ज्ञान का घी डालते रहना है। जो सूक्ष्म कमजोरियां हैं तिल मुआफिक, उन कमजोरियों की आहुति देते रहना है। जो जाव हैं देह अभिमान की निशानी, वैराग्य को नहीं डालना है, वैराग्य तो प्रज्वलित होना चाहिए, लकड़ी डालनी। तो देह अभिमान जो है, मैं और मेरेपन का अभिमान जो है, देह के संबंध जो है, जो बुद्धि से पकड़ के रखे हुए हैं, उन सब की तिलांजलि देनी है। अनावश्यक इच्छाएं हैं, व्यर्थ संकल्प हैं, व्यर्थ बोल हैं, नाम मान शान की इच्छाएं हैं, इन सब की आहुति देनी है। और ये यज्ञ इतनी जल्दी संपन्न होने वाला नहीं है। जब बाबा कहते हैं जब तक जीना है तब तक तुमको ज्ञान अमृत पीते रहना है, तब तक ये ज्ञान की अग्नि, योग की अग्नि प्रज्वलित करके रखनी है। ये अग्नि ठंडी ना होना पाए, और ये अग्नि ठंडी कब कब होती है उसके भी हम सभी अलग अलग तरीके से अपने अपने जीवन में झांक कर देख सकते हैं। एक तो बताया फुर्सत किस में, दूसरा जब हम संग दोष में चले जाते हैं तो भी अग्नि ठंडी हो जाती है, तो संसार की तरफ हमारा बुद्धि चला जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं संग दोष से सावधान, ये अकेले चलने का मार्ग है, निराधार कुछ दिन पहले ना मुरली में था ना कि तुम्हें निराधार रहना है, किसी को अपना आधार नहीं बनाना है। टेम्परेरी आधार तो हैं लेकिन हमें सब पता है कि ये आधार तो गिरने वाले हैं। एक परमानेंट आधार एक ही है। सब आधार छूटने से पहले एक बाप को अपना आधार बना लो। बाप आए ही हैं आप सबको मदद करने के लिए। तो एक सच्चा आधार वही है जिस आधार पर हमारे जीवन का उद्धार होगा। तो एक परमानेंट आधार कार्ड हमको तैयार करना है जो पेपरलेस हो, डिजिटल। तो हमें किसी के भी आधार पर जीने की मंशा नहीं रखनी है। नहीं तो मन बुद्धि से हमने पकड़ के रखा हुआ है, ये मुझे सहयोग दे, ये मेरी थोड़ी सुने। सारे दिन में हमारा बुद्धि योग उन्हीं देहधारी आत्माओं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो अकेले चलने का मार्ग है, जितना हम ऊपर वाले को अपना आधार बनाएंगे तो दूसरे आधार अपने आप धीरे धीरे छूटते जाएंगे। हम ऊपर वाले की हजार बुझाव वाले की मदद लेने की बजाय दो बुझाव वाले की मदद लेते हैं तो हमारा प्रसाद धीरे धीरे डाउन हो जाता है। इसलिए ऊपर वाले को अपना आधार बनाना है तो हमारा सच्चा उद्धार होगा, तो हम दूसरों का उद्धार करने के निमित्त बन सकेंगे। तो जो हमारे जीवन की ऐसी कमजोरियां, छोटी छोटी कमजोरियां हैं जिनकी आहुति देनी है, तो स्वयं ही अपनी जांच करनी है। और वो सभी की अपनी अपनी कमजोरियां अलग से हो सकती हैं, सबकी अलग अलग हैं। और किसी की कोई वास्तव में एक मुख्य ही कमजोरी होती है जिस जो कमजोरी हमको आगे बढ़ने नहीं देती है। इसलिए बाबा कहते बार बार उस पर प्रतिज्ञा करो, दृढ़ता से उसको रिवाइज करो, रियलाइज करो, तो छूटेंगे। नहीं तो वो ही कमजोरी हमको पकड़ के रख लेती है। उस कमजोरी से छूटने के लिए तो हमको इस अंतिम महायज्ञ में आहुतियां देनी है। तो निरंतर ज्ञान का घी इस यज्ञ में डालते रहना है। जितना ज्ञान हमारी बुद्धि में चिंतन चलता रहेगा तो उतनी अग्नि प्रज्वलित होगी, उतने विक्रम विनाश होगे, मन बुद्धि हल्का होगा, उमंग उत्साह में रहेंगे, जीवन निर्विघ्न बनता जाएगा। नहीं तो बाबा कहते हैं कई कई बच्चे यज्ञ में विघ्न बन पड़ते हैं। यज्ञ में विघ्न क्या है? हमारे व्यर्थ संकल्प ही यज्ञ के लिए विघ्न है। हमारे व्यर्थ संस्कार, पुराने संस्कार ही यज्ञ के विघ्न है, यज्ञ के लिए विघ्न है। यज्ञ किस लिए रचा जाता है? वातावरण की शुद्धि के लिए। तो वातावरण की शुद्धि के लिए बाबा ने हमारा चयन किया है। उस वातावरण को अगर हम अशुद्ध करते हैं तो हम सबसे बड़े असुर ठहरे। असुर कोई बाहर नहीं है, अंदर ही हमारे बैठे हुए हैं, चाहे वो विकारों के रूप में हैं, किसी न किसी रूप में, सूक्ष्म में इच्छाओं के रूप में हैं, वो सब हमारे अंदर ही हैं। तो ये हमारा जीवन ही वास्तव में एक महायज्ञ में है, महायज्ञ है। तो इस महायज्ञ में लगन की अग्नि प्रज्वलित करनी है। बाबा कहते हैं मधुबन क्या है? बेहद का महायज्ञ है। क्यों? क्योंकि अनेका अनेक आत्माओं की लगन की अग्नि यहाँ निरंतर प्रज्वलित होती रहती है। तो उस लगन की अग्नि में भी हमको ऐसा विघ्न डालने का प्रयास नहीं करना है, विघ्न डालने की कोई ऐसी हमारे अंदर कोई ऐसी आदत ना हो जो दूसरों को प्रभावित करे या दूसरे के पुरुषार्थ को गिरा दे, या कोई हमारी ऐसी चाल चलन हो कि हमको देख के किसी का पुरुषार्थ ठंडा हो जाए, या कोई हमारा ऐसा बोल हो जो हमारे बोल सुनकर ही दूसरे का पुरुषार्थ नीचे गिर जाए, यज्ञ की आग ठंडी हो जाए। तो हमें इस प्रकार का कोई विघ्न नहीं पैदा करना है। हाँ जी, यज्ञ से बाहर चला जाए तो वो बहुत बड़ी बाधा है। तो क्योंकि आने वाले, बताया ना पहले बाबा कहते हैं आजकल सुनने की क्षमता बहुत कम रहेगी आत्मा में, केवल हमारे जीवन ही एक खुली किताब की तरह बन जाए। और वास्तव में होता भी ऐसे, जितने भी यहाँ आते हैं, चाहे वो शिविर में आते हैं, चाहे वो ब्राह्मण आत्माएं आती हैं, तो यहाँ किसको देखती हैं? जो यहाँ के रहने वाले हैं उनके जीवन चरित्र को पढ़ के चली आती हैं। यहाँ भी हम क्लास में बैठते हैं तो शायद यहाँ बैठने वाले जो सुनते हैं कम याद रहता है, लेकिन हमारे चरित्र को पढ़ते चली जाती हैं। जैसे कोई कोई अगर क्लास में नहीं आते हैं तो उनको देखते रहते हैं, अभी इस क्लास में पिछली बार जो आया वो तो था, अभी इस बार नहीं है, फिर उसको ढूंढ के पूछते हैं अभी क्लास में क्यों नहीं आते हो। जो नहीं आते हैं उनको पूछते हैं वो क्यों नहीं आते हैं, तो माना हमारे प्रेजेंट को ही देखते रहते हैं, भले पल्ले हमारे कुछ नहीं पड़ रहा है, अगर हमारी प्रेजेंट को देखकर वो खुद प्रेजेंट रहेंगे तो भी उनके जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। तो प्रेजेंट रहना भी बड़ी बहुत बड़ी सेवा है। तो इस यज्ञ को प्रज्वलित करने के लिए हमें हमेशा निरंतर, जो परसों भी बताया, वो अग्नि प्रज्वलित करने, त्याग की अग्नि, तपस्या की अग्नि, सेवा की अग्नि, लगन की अग्नि, प्रेम की अग्नि, पवित्रता की अग्नि, वैराग्य की अग्नि, ज्ञान की अग्नि, योग की अग्नि, ये सब प्रकार की अग्नियां निरंतर प्रज्वलित होती रहनी चाहिए, ज्वाला प्रज्वलित होती रहनी चाहिए, एक ज्वालामुखी की तरह हमारा जीवन हो, निरंतर जागरूक, आलस अलवेलेपन से मुक्त। कई प्रकार के आलस्य अलवेलेपन हो सकते हैं, खाली नींद को आलस्य अलवेलेपन नहीं कहा जाता, किसी काम को टाल देना, टाल मटोल कर देना, या कोई काम हमारे से ठीक नहीं हो रहा है डेली डेली, कई उस काम में विसंगतियां लंबे समय से चलती आ रही हैं, उसको कभी कुछ है कभी कुछ है, उसको ठीक करना। तो वास्तव में कई प्रकार के आलस्य अलवेलेपन में हमारे जीवन में चिपके हुए हैं, बहानेबाजी, टाल मटोल करना। तो ये सब चीज़ों से मुक्त होंगे तो ही हम सच्चे सच्चे इस यज्ञ के रक्षक बनेंगे, सच्ची सच्ची आहुति देने के योग्य बन सकेंगे। तो इस यज्ञ के, इस बेहद के महायज्ञ में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका तभी कही जाएगी जब इसके प्रति हम पूरी वफादारी से, पूरी समर्पणता से, पूरे मनोयोग से, पूरी निष्ठा से हम जागरूक हैं, तन मन धन समंस में श्वास कल्प कर्म बोल पूरी तरह से बीसों नाखूनों का जोर लगा के इस यज्ञ में अपनी अपना सहयोग देंगे। तो और इस यज्ञ में क्या क्या हम डाल सकते हैं, हाँ जी, अपनी विशेषताओं को, जो भी विशेषताएं हैं उनकी टाल मटोल नहीं करनी है, बहानेबाजी के कारण हम अपनी विशेषताओं को खुद ही दबाते रहते हैं, है ना। आज अगर थोड़ा बहुत लेट हो गए तो हम बहानेबाजी बना देंगे, अर्थात हमने अपनी विशेषताओं को खुद ही दबा दिया। भगवान ने जो हमारे अंदर विशेषताओं का भंडारा बड़ा पड़ा है, विशेषताओं की खान है, हर एक को बाबा ने जन्मते ही वरदानों से संपन्न कर दिया। अभी 12 तारीख को मुरली चली तो उसमें क्या बाबा ने कहा था, जन्मते ही तुम बच्चों को बाबा ने वरदानों से संपन्न कर दिया है। तो सारे वरदान हमारा जीवन ही वरदानी मुहूर्त बन गया है। तो हम वरदानों को समय पर कार्य में नहीं लगा रहे क्योंकि स्मृति में रखे, और वो स्मृति में नहीं रखे तो होते हुए भी चीज जैसे वो नहीं है। तो हम खुद ही अपने लिए एक तो कुल का कलंक लगा रहे, कुल को कलंकित कर रहे हैं, खुद के जीवन को कलंकित कर रहे हैं, श्राफित कर रहे हैं, घर के दीपक घर को ही जला रहे हैं कुल के दीपक घर के दिवाली, तो दिवाली ने वो दिवाला निकल रहा है तो सच्ची सच्ची दिवाली आ रही है। तो हमको ऐसे दीपक जला के रखने हैं जिस दीपक से हमारा जीवन तो रोशन रहे लेकिन अनेका अनेक आत्माएं भी उनके जीवन को भी रोशन कर सकें, उनके जीवन को भी, उनके जीवन के अंधकार को मिटा सकें, जो अंदर में गहरा तिमर है, गहरा अंधकार है, जिसमें एक छोटा सा अगर उम्मीद का दीपक भी जल जाए हमारे जीवन को देखकर, तो भी बाबा कहते हैं आज की मुरली में, शायद नहीं 2016-3-2021 की मुरली में, अगर एक भी आत्मा का दीपक जल गया तब भी वह सौभाग्य कहेंगे। तो ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए कि दूसरे भी देखकर उनके जीवन भी एक रोशन बन जाए, उनके जीवन में निखार आए, समस्याओं का समाधान हो जाए, ऐसे नहीं हमारा जीवन दूसरे के लिए समस्या बन जाए, फिर बार बार अपने प्रति बहाने बने बनाते रहेंगे। और एक बार अगर संस्कार पड़ गए तो परमानेंट काम करते हैं, फिर उन संस्कारों से छूटना बड़ा मुश्किल होता है। हम खुद ही देखते हैं मधुबन में जब नए नए आए थे तो जिन संस्कारों से हम थोड़ा थोड़ा लूज रहे वो लंबे समय तक उन संस्कारों से जूझते रहते हैं फिर, और जिन संस्कारों पर हमने अपनी कड़ी नज़र रखी उनसे तुरंत छूट गए, नहीं तो संग में आकर धीरे धीरे वो संस्कार इतने पक्के हो जाते हैं उनसे छूटना बड़ा मुश्किल होता है। और एक बार पटड़ी से गाड़ी उतर गई तो उसको लाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस भीड़ से पहले चल रही थी उस भीड़ से दोबारा नहीं चलेगी, उसमें मेहनत करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बहुत अटेंशन रखनी पड़ेगी, समय बहुत लग जाएगा उसमें। इसलिए अपने बहानेबाजी के कारण अपने जो ऊंच कुल के हमारे संस्कार हैं, जो हमारे अंदर बाबा ने वरदान के वरदानों के रूप में हमारे अंदर उनका सृजन कर दिया है, उन संस्कारों को हम खुद ही दमन कर रहे हैं, उनको उन विशेषताओं का खुद ही हम दमन कर रहे हैं, योग्यता का खुद ही दमन कर रहे हैं, तो दूसरा हमें कोई पूछने वाला नहीं है। तो खुद ही अटेंशन रखना पड़ेगा, नहीं तो कल खुद की बहाना मार देना कि आज क्या हुआ ना, आज मैं 6 बजे उठा। अरे भाई क्यों उठे 6 बजे, तुमको किसने बोला 6 बजे नहीं उठना था, 10 बजे उठना फिर तो आए किस लिए हम इधर, एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, ठीक है, लेकिन बार बार उसी को हम कर रहे हैं और दूसरों के ऊपर बहाना मार रहे हैं, क्योंकि अपने आप को सेफ्टी करने के लिए दूसरों को हम सामने रख देते हैं। हम अपने आप को दूध से दुला हुआ सबके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, लेकिन हजारों विसंगतियां अगर हमने ये स्वीकार कर लिया है कि ऐसी विसंगतियां हमारे में हैं, वो स्वीकार करना ही छूटने का मार्ग है। जब तक हमने अपनी विसंगतियों को, अपनी जो हमारे अंदर कमी कमजोरी हैं, उनको स्वीकार नहीं किया, उनकी आहुति पड़ेगी नहीं यज्ञ में, वो खुद ही यज्ञ के लिए विघ्न बन जाएंगे और धीरे धीरे अंत में पश्चाताप के हाथ सिवाय हमारे हाथ में कुछ आने वाला नहीं। तो इस बेहद के यज्ञ में हमारा पूरा सफल जीवन हो जाए, इस बेहद के महायज्ञ में हम आहुतियां डालते रहें, महान सेवा करते रहें। बेहद का यज्ञ जो बेहद के सेठ ने रचा हुआ है, बाबा कहते जो बच्चे इस यज्ञ में मददगार बनते हैं, बाप उनको देखकर खुश होते हैं, खुद का टीचर बने और बाप तो खुश है, उससे पहले हमको खुशी होगी। अगर हम खुद ही विघ्न बन रहे हैं तो खुद ही जीवन दुखी रहेगा, भले सबके सामने मुस्कुराते, लेकिन अंदर में जैसे वो कीड़े पड़े ना, वो कीड़े खाते रहेंगे अंदर ही अंदर हमको। तो इस बेहद के महायज्ञ में हमको स्वयं ही अपनी जांच करते रहना है और आहुतियां डालते रहना है, ताकि इस यज्ञ की संपन्नता में हम बाबा के पूरे पूरे भगवान ने हमको मददगार बनाया, कितनी बड़ी बात है। वो तो चाहे सेकंड में इस यज्ञ को संपन्न कर सकता है, लेकिन उसका कितना बड़ा उपकार है, कितनी बड़ी हमारे ऊपर कृपा आशीर्वाद है कि हमको इस बेहद के यज्ञ के योग्य समझा उसने, कि हमारा जीवन इस यज्ञ में उसने सफल कर दिया। नहीं तो तुलना की जिस संसार में अगर हमारा जीवन होता तो कैसे होते हम, कीड़ों की माफी की होता है। तो बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया, बाबा ने क्या, ये यज्ञ कौड़ी से हीरा बनाने वाला यज्ञ है, ये सत्तमो प्रदान से सतो प्रदान, पतितों को पावन बनाने के लिए है। तो ऐसे यज्ञ में बाबा ने हमको चुना है, रखा है, तो हमारे खुशी में बाबा कितने रोमांच खड़े होने चाहिए, तुम्हारे पाँव के नाखून से छिरकी चोटी तक तो खुशी इतनी होनी चाहिए कि खुशी के मारे तुम्हारी नस फट जानी चाहिए, लेकिन नस ही गुम हो गई है, और नस काम वही पकड़ में नहीं आ रही है, नस हमने किसी दूसरे के हाथ में दे के रखी है, माया के हाथ में दे के रखी है, और नस जैसे हमको पकड़ में नहीं आ रही है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अगर हम बाबा के उपकार भी हम स्मृति में रखें तो भी हो सौभाग्य। तो ऐसे इस बेहद के महायज्ञ में निरंतर हमको जागरूक रहना है हमारा, और देखना नहीं है किसी को भी, क्योंकि त्याग तब होगा जब हम अपने जीवन के, और इसलिए बाबा कहते हैं फॉलो फादर, ब्रदर सिस्टर नहीं, कौन क्या कर रहा है वो नहीं देखने का, अगर उसमें हम गए तो हम भी डूबे। इसलिए हमको क्या करना है, हमारा इस जीवन इस यज्ञ में कितना योगदान है वो हमको देखना है। कुछ साल पहले हमारे पास भी एक आए, मन बहुत नियर डियर, वो अपने आप को समझते थे, हम तो सबको नियर और सबको डियर भी समझते हैं, वो सम तो आपके पास भी एक ना गाड़ी तो होनी चाहिए, किस लिए, बोला जब भी हम इधर आते तो कम से कम हमारे काम तो आएगी। अपने स्वार्थ के लिए माना दूसरे भी कैसे सोचते हैं। तो हमने बोला हमको, हमारे लिए तो सारी गाड़ियां अपनी हैं, ये जितने भाई बहनों को गाड़ी सभी अपनी गाड़ी है, हमको कौन मना करेगा। बाबा का यज्ञ बेहद का यज्ञ समय पर जहां चाह वहां राह मिली जाती है। हाँ, अगर अपनी इच्छा सूक्ष्म स्वार्थ की इच्छाएं हैं तो जितने भी साधने वो सारे हमको डुबा देंगे, वो साधना में खलल डालेंगे, हमारी साधना को भंग कर देंगे। हाँ, अगर सेवा अर्थ हमने सच्चे मन से साधनों का सदुपयोग किया तो साधन हमारी साधना के निमित्त बनेंगे, वो साधन ही सहयोगी बन जाएंगे। अगर स्वार्थ है तो वो साधन हमको हमारे पुरुषार्थ को डुबा देंगे, हमारे जीवन को डुबा देंगे और हमको ले साधना से बड़ी दूर लेकर चले जाएंगे। लेकिन हमारी मानसिकता कैसी है, गर्त में डाल देंगे वो। तो देखना है हमारा यज्ञ में क्या क्या योगदान है, इस बेहद के यज्ञ में क्या हमारा जीवन निरंतर उस अग्नि की तरह प्रज्वलित है, दूसरे के जीवन की आहुतियां डाल रही हैं। बाबा ने कहा पूरी दुनिया इसमें स्वाहा होने वाली है, उससे पहले हम अपने जीवन को अच्छी तरह स्वाहा कर दें। ओम शांति। बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा है, यज्ञ निवासियों को अपने अधिकार तो याद रहते हैं लेकिन कर्तव्य भूल जाते हैं। तो हर एक आत्मा यज्ञ निवासी है, हाँ जी, हाँ हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक सभा में कहा था कि आज का मनुष्य अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा अपने अधिकार जताता है वो, लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति विमुख हो जाता है। तो हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना है तो अधिकार हमारे पीछे परछाई की तरह आएंगे। बाबा ने कहा ना, सफलता तो तुम्हारे पीछे आएगी, लेकिन हम परछाई को पकड़ने का प्रयास करते तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। इसलिए सूरज की तरफ हमारा, सूरज की तरह, सूरज के आगे हमारा जीवन हो, सूरज हमारे सामने है तो परछाई अपने पीछे आएगी। अगर हम सूरज को पीठ दिखाएंगे, भगवान को पीठ दिखाएंगे, तो परछाई कहाँ जाएगी? आगे आगे जाएगी और परछाई को पकड़ते रहेंगे, वो हमारे हाथ में भी नहीं आएगी। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, हमेशा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो तो उसकी सारी शक्तियां तुम्हारी हो जाएंगी, सारे अधिकार तुम्हारे हो जाएंगे। सूरजमुखी रहे बंद करो, इसलिए सूरज रे जलते रहना। हाँ, ये सभी लिख सकते हैं, यज्ञ निवासियों के कर्तव्य 108 लिखने, सभी को 108 कर्तव्य, सभी को ये होमवर्क करना है। पांच कैटेगरी, कुमारों के कर्तव्य, कुमारियों के कर्तव्य, माताओं के कर्तव्य, अदर कुमारों के कर्तव्य, टीचर के कर्तव्य, मधुबन निवासियों के कर्तव्य। तो ये पांच प्रकार के कर्तव्य, छह प्रकार के कर्तव्य, ये सभी को होमवर्क करना है। और ऐसा नहीं सोचना कि कोई अदर कुमार है तो मैं अदर कुमार के, उसको भी छह कर्तव्य प्रकार के कर्तव्य लिखने हैं। पहले अगर कोई अदर कुमार है तो उसको सोचना है, मैं मधुबन निवासी हूँ तो मेरे कौन कौन से कर्तव्य हैं। अगर कोई मधुबन निवासी है तो उसको सोचना, मैं अदर कुमार हूँ तो मेरे कौन कौन से कर्तव्य है। माताएं, माताओं के क्या कर्तव्य हैं? अदर कुमारी आ गई ना, माताएं दो नहीं, एक नहीं, छह प्रकार के लिखने कर्तव्य और 108 लिखने हैं। और ऐसा नहीं करना कि इंटू करके 108 हो जाए, नहीं, 108 कंटिन्यूज लिखने हैं, एक को 108 बार पढ़ लो, ऐसे नहीं लिखना है। तो ऐसे लिखना, होमवर्क देंगे तो ये बुद्धि जो ना एनर्जी से भर जाएगी और कर्तव्य के प्रति हम जागरूक हो जाएंगे। लिखे होंगे, भूल गए ना, फिर दोबारा से लिखेंगे। हाँ, लिस्ट, वही लिस्ट लिस्ट में रह जाती है। ओम शांति।
धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा हूँ, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ, शीतल हूँ, ज्वाला हूँ। दिव्य गुण से निज को नित निखार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, ठान लूं जो चाहूं तो कर सकता जरूर हूं। संग शिव के स्वर्ग भू पे ला रहा हूं मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं।